भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सांवत्सरं पुंसवनाम व्रतमेतादविप्लुताम् धारयिष्यसि चेतुभ्याम् शक्रः भविता सुतः सांवत्सरं पुंसवनाम्
व्रतमेतद्विप्लुताम्
धारयिष्यसि चेतुभ्याम् शक्रः भविता सुतः न ममारदितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसक्षुण द्रोणस्त्रेण जथा भवान। इसी श्लोक की आवृत्ति करेंगे 65 नंबर। न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिसक्षुण द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्
न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसक्षुण द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्
श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसच्छृण द्रौढस्त्रेण यथा भवान्
श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसच्छृण द्रोण सेन यथा
भवतिर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसक्षुण्यो द्रोणस्त्रेण यथा भवान्
न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसच्छृण द्रोणस्त्रेण यथा भवान्
श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिसच्छृण द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्
नवमारादितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिस क्षीण द्रोण्यस्त्रेण यथा भवत्
श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिसक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्
मर्षका दीते है माता दीति का गर्भ गर्भस्थ बच्चा श्रीनिवास लक्ष्मी निवास श्री भगवान अनुकंपया अनुकंपा से बहुधा बहुत प्रकार से कुलिशक छूड़ो वज्र के द्वारा काटा हुआ द्रोणी अश्वत्थामा के अस्त्रेण ब्रह्मास्त्र से जथा जैसे भवान आप परीक्षित महाराज दीति ने पुंसवन व्रत करने का उत्साह दिखाया अपने पति के प्रति और वही से उद्देश्य के लिए व्रत करना चाहती थी कि उसे एक मृत्युशून्य पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध कर दे। तो कश्यप जी अपने वचन की रक्षा के लिए दीति को एक व्रत करने के लिए कह रहे हैं और उनका उद्देश्य था कि दीति जब यह व्रत करेगी तो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, इंद्र के हत्या का विचार उसके हृदय से बीत जाएगा। और उन कश्यप जी की बात भी रह जाएगी, सच्ची होगी और बच्चा अजर अमर होगा। तो कल के प्रसंग में कश्यप जी ने बताया था क्या क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या क्या करना चाहिए। तो अंत में वे कहते हैं सांवत्सरम पुंसवनम व्रतमेतद विप्लुतम धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहात् भविता सुतः। सुनो दीति, यह पुंसवन व्रत है। पुंसवन सवन का अर्थ जन्म देना, यह पुत्रद व्रत है, पुत्र देने वाला व्रत है, पुत्र उत्पत्ति करने वाला है। इस व्रत को एक वर्ष तक करना है, सांवत्सरम एक संवत्सर करना है। यदि तुम इस व्रत को अविप्लुतम धारयिष्यसि, यदि निर्विघ्न धारण करोगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो तुभ्यम तव पुत्र शक्र है भविता, तो तुम्हारा पुत्र शक्र का वध करने वाला होगा। यदि एक वर्ष तक तुम ठीक से निर्विघ्न इस व्रत का पालन करोगी तब चेत कार्त यदि, और यदि नहीं कर सकी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का बंधु होगा, इंद्र का अनुगामी होगा। ये दोनों बात है, यदि एक वर्ष तक तुम इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का प्रेमी होगा, इंद्र का वध नहीं करेगा। ये अर्थ है, अगर एक साल तक कर दोगे तो तुम भी बदल जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कश्यप जी के कहने का आशय यह है, एक वर्ष तक लगातार कोई बड़ी तत्परता से मन वचन शरीर से भगवान की भक्ति करे, खूब जप करे, भगवान की आरती करे, पूजा करे और निषेध के नियमों का पालन करे, ये नहीं करना है, नहीं करना, तो क्यों नहीं उसका चित्त बदल जाएगा। और पुत्र तो अमर होगा ही, इस तरह से इंद्र की हत्या भी नहीं होगी। तो सांवत्सरम पुंसवनम, एक वर्ष व्यापी या पुंसवन व्रत है, चेत यदि तुम इसको अविप्लुतम अखंड रूप से करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा। दिति ये समझ रहे थे कि इंद्र का वध करने वाला होगा, लेकिन संस्कृत के परम विद्वान कश्यप जी यही बोले कि तुम इस व्रत को ठीक से करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा, इंद्र का स्नेही होगा। अब समझने वाला सामने न समझे तो वक्ता का कोई दोष नहीं होता। कश्यप जी ऐसे कैसे कह सकते थे कि तुम ठीक से व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का हत्यारा होगा, इंद्र का वध करेगा, ऐसे तो कह ही नहीं सकते थे। पर दीति के सुनने में ऐसा ही लगा। हा का अर्थ है हत्या करने वाला, समझी हो, ये नहीं समझी कि हा का अर्थ अनुगत्य के अर्थ में भी है। तो जो भी हो, कश्यप जी इस प्रकार कहते हैं, परंतु यदि बीच में त्रुटि हो गई तब वो इंद्रहा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान के भक्ति में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो अन्य क्रियाकांड जैसा वो त्रुटि नहीं माने जाती है, बल्कि यहां तक कहा गया है कि जस्य स्मृत्या च न मुक्त्या तपो जग क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तम अच्छितम। यदि अन्य क्रियाएं व्यक्ति करता है, यज्ञ तप आदि, अगर उनमें कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को भगवान का नामोच्चारण और भगवान की का स्मरण ही पूरा कर देता है। कोई व्यक्ति कुछ क्रिया कर रहा है, भगवान की याद कर ले या भगवान का नाम बोल दे तो उसमें जो भी कमी होती है सब पूरी हो जाती है। तो फिर भगवान की भक्ति में कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस तरह दीति को आश्वासन दिए, एक अत्यंत क्षुब्ध हृदय को सांत्वना दे रहे हैं, जिसके हृदय में बहुत दुख है, दीति को समझा रहे हैं। बात यह है कि जिस व्यक्ति की चेतना जैसी होती है उसके अनुसार ही भक्ति का उपदेश किया जाता है। उसके मन में अनेक कामनाएं होती हैं, अनेक वासनाएं होती हैं, उसके कुछ मनोरथ होते हैं, उन मनोरथों की पूर्ति के संबंध में अनुकूल बात न कही जाए तो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि उसे ये आश्वासन मिले कि उस व्यक्ति की शरण में जाने से हमारी इच्छा पूरी होगी तो उसी की शरण में जाएगा। इसलिए कश्यप जी अपनी पत्नी के चित्त की धारा के अनुसार प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है मैं एक साल का एक व्रत बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, इसको तुम करोगी निर्विघ्न तो तुम्हारा पुत्र इंद्रहा होगा, शक्रहा होगा, शक्र का वध करेगा। उनके कहने का आशय ये था, यदि इंद्र का वध करने वाला पुत्र नहीं मिलेगा यह कह दिए होते या तुम्हारा चित बदल जाएगा ये कह दिए होते कश्यप जी तो वो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के क्रिया के पीछे, क्रिया में जोश देने वाला उसका संकल्प होता है, उसका मनोरथ होता है। आजकल भगवान की भक्ति का उपदेश करने वाले लोग इस तथ्य को खो दिए हैं, भूल करते हैं। शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो, ये करो ये करो। शुद्ध भक्ति क्या कोई खाक करेगा? कहने से तुम्हारी शुद्ध भक्ति करेगा? जो कहने वाला व्यक्ति है कि शुद्ध भक्ति करो, उसी से पूछिए कि उसके हृदय में कितनी इच्छाएं हैं, क्या क्या मनोरथ है। जीव इच्छाओं से भरा है, चाहे जो भी इच्छा हो, वो दीति जैसी बहुत हिंसक इच्छा है अथवा दूसरी प्रकार की इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए उसे भगवान ही अंतिम शेल्टर है, वही उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो बुरे विचार होते हैं, हिंसक भाव आदि होते हैं, वो सब हृदय से दूर हो जाते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है, सहज स्वरूप है। अतः किसी भी व्यक्ति को यह कहना कि तुम ये सब मैटेरियल डिजायर छोड़ दो, भौतिक कामना छोड़ दो और भगवान का भजन करो, वो कभी नहीं कर सकता। ये हुआ नहीं आज तक। वो करेगा भगवान की भक्ति, नाम जप करेगा, प्रणाम करेगा, भागवत पढ़ेगा, सुनेगा, अपने आप वो सब कुछ हो जाएगा। उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चाहे कितनी भी सांसारिक इच्छा हो, भगवान उसे पूरा कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आया है कि कर्दम जी भगवान से स्पष्ट मांगे कि मैं विवाह करना चाहता हूं, आप हमारे धर्म में सहयोग देने वाली कन्या हमें दीजिए, हमारा विवाह आप कराइए, भगवान से डायरेक्ट कहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, परसों आपके आश्रम पर मनु महाराज आएंगे अपनी पत्नी के साथ, सत्रुपा जी के साथ, और वे अपनी कन्या देवहूति को आपको अर्पित करेंगे। और इतना भगवान ने आश्वासन दिया, आप देवहूति के साथ धर्म पूर्वक रह करके संतान उत्पन्न करेंगे और मैं स्वयं ही माँ को भक्ति योग का दान करने के लिए उसके गर्भ से जन्म लूंगा। भगवान विवाह भी तय कर रहे हैं और कहते हैं मैं ही पुत्र बनूंगा। अब इससे सुंदर गार्हस्थ जीवन क्या होगा? विवाह के पहले ही भगवान आश्वासन दिए कि मैं पुत्र बनूंगा, और भगवान कृष्ण कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार कश्यप जी ने तो 10,000 वर्ष तक तप किया था, पर उनके हृदय में यह इच्छा थी कि उनको योग्य पत्नी मिले जो भगवान की भक्ति में सहायता दे उनको। तो भगवान ने वो विवाह की व्यवस्था किया। इस प्रकार से धन की बात है, ध्रुव महाराज सर्वोपरि धन के अभिलाषी होकर के निकले थे, अपने सौतेली माँ सुरुचि के वागवाणों से विद्ध होकर ध्रुव महाराज घर छोड़कर चले थे। नारद जी उन्हें शांति का मार्ग समझा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते थे, लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन लौट नहीं सकता। यदि आपके हृदय में दया है तो आप हमें बताइए कि भगवान कैसे मिलेंगे, और मैं भगवान से सर्वश्रेष्ठ लोक प्राप्त करना चाहता हूं। तब नारद जी ने अनुमोदन किया, कहा ठीक है इसके लिए आप जाओ मधुबन, वृंदावन जाओ, वहां इस तरह से भजन करना, ये ध्यान करना, ये जप करना, ये चीज खाना, ऐसे नहाना, भगवान की पूजा ऐसे करना, सब सिखाया नारद जी ने। तो ध्रुव महाराज गए, 6 महीना उन्होंने द्वादशाक्षर विद्या का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपते जपते अंत में इनकी पूर्ण शुद्धि हो गई। भगवान से साफ कहते हैं कि स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे स्वामी मैं कृतार्थ हूं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं तो कांच के टुकड़ा को पाने के लिए घर से चला था, परंतु मुझे स्पर्श मणि मिल गया, पारस पत्थर मिल गया जो लोहे को सोना बनाता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान दिए। क्यों दिए ध्रुव लोक? कि लोग आगे ये न प्रचार करें कि भगवान देते नहीं है, हृदय बदल देते कोई उपाय करके भगवान हृदय बदल देते हैं जिसे देना न पड़े। भगवान ने सोचा ये कौन बेइज्जती लेने जाए, हमको देना ही है, तो जबरदस्ती ध्रुव महाराज को दिए, जबरदस्ती इतना बड़ा धन दिए। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक के शासक हैं, स्वामी हैं, और सप्तर्षि मंडल में जो भी जीव रहते हैं सभी उनकी परिक्रमा करते हैं। वो वैकुंठ का प्रदेश है वास्तव में ध्रुव लोक, तो भगवान इस तरह देते हैं। तो यहां पर कश्यप जैसा परम दक्ष और प्रेमी पति अपनी पत्नी के उन्नयन के लिए, उसके उन्नति के लिए किस ट्रिक से काम कर रहा है। ठीक है, तुम व्रत का पालन करो तो तुम्हारा पुत्र सक रहा होगा, लेकिन अखंड व्रत का पालन करना है। बहुत अच्छा से बताया था। तब दीति ने कहा, वाढ़म इत्य अभिप्रेत्याथ दीति राजन महामना काश्यपम गर्भमा धत्त व्रतम चांजो दधारसा। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधन करते, हे राजन, सा दीति, वह दीति, सा दीति से याद दिला रहे हैं, वह दीति जो इंद्र के प्रति इतनी प्रतिशोध की भावना रखती थी, वह दीति पुंसवन व्रत के उपदेश की बात सुन करके वाढ़म का स्वीकार है, स्वीकार, ठीक है, मैं समझ गई और मैं करूंगी, इति अभिप्रेत्य, इस प्रकार अंगीकार करके और बड़े उत्साह से कश्यप जी के तेज को धारण किया, अर्थात उनके वीर्य को धारण किया, वो गर्भवती हुई। तो गर्भ को धारण किया और व्रत को धारण किया, दोनों को एक साथ धारण किया, चालू किया। महामना, हृष्ट मन वाले थे, मन में बहुत हर्ष था, उत्साह था। उत्साह इस बात का था कि मैं पुत्रवती बनूंगी और मेरा पुत्र अमर होगा, वो कभी भी किसी तरह से मारा नहीं जाएगा, और मेरा पुत्र मेरी सौत के लड़के को इंद्र को मार देगा। इस बात को सोच सोच करके वो बहुत खुशी में थी। महामना, महामना का अर्थ है महान मन वाली, अर्थात तो उसके मन में आशा और सुख छाया रहता था। तो गर्भ को धारण की और गर्भ के धारण के साथ ही उसने व्रतम चांजह दधार सा, अंजह दधार, अंजह का अर्थ यथावत, जैसा उपदेश दिया था कश्यप जी ने, वो सारा व्रत का पालन प्रारंभ की, गर्भ धारण की और व्रत पालन प्रारंभ की। अब देखिए इंद्र भगवान की क्या दशा होती है सुन करके, उनको मारने के लिए पुत्र उत्पन्न हो रहा है। तो मातृ श्वशुर अभिप्रायम इंद्र आज्ञाय मानद शुश्रूषणे नाश्रम स्थान दीतिम पर्यचरत कभी। इंद्र देवता को यह सूचना मिली कि उनका वध करने के लिए उनकी सौतेली मां दीति गर्भ धारण की है और पुंसवन व्रत कर रही है। उनको यह भी सूचना मिली कि यदि एक वर्ष तक व्रत पूरा हो जाएगा तो वह बच्चा निश्चित मेरा वध करेगा। मातृ स्वसु, स्वसा का अर्थ बहन, माई के बहन, माई की बहन का अभिप्राय सुना इंद्र भगवान ने। माई की बहन तो मौसी का, मौसी का अभिप्राय सुना इंद्र ने। मातृ श्वशुर अभिप्रायम, इंद्र भगवान आज्ञा या किसी प्रकार से पता लगा लिए या उनको पता हो गया अपने आप, हे सबको मान देने वाले परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनकी मौसी उनका वध करने के लिए पुत्र उत्पन्न करने वाली है, तभी उसके आश्रम में आए भेष बदल करके। कई सेवक थे दीति के, तो उसमें से एक सेवक का रूप बना करके देवराज इंद्र आए, पूरा अपना भेष छिपा कर, उसके जैसी बोली, उसके जैसे आंख, चेहरा, सब कुछ। दीति को पता नहीं चला कि यह इंद्र है। और इंद्र को मारने के लिए बच्चा उत्पन्न होने जा रहा था, तब इंद्र उस बच्चे को मारने के लिए आश्रम पर आ गए कि व्रत में जहां कोई कमी आएगी तो मैं इसके मुख में प्रवेश करूंगा योग बल से और बच्चे को मार दूंगा। अरे जब हमको मारने के लिए जन्म ले रहा है तो उसको जन्म न होने दूं, या वो समझते थे कि बिल्कुल न्याय है, मरता क्या न करता है। जब हमको मरना है और वही लड़का मारेगा तो किसी भी तरह से वह मर जाए, जन्म न ले, इस फेर में पड़े इंद्र। शुश्रूषणेन आश्रमस्थं दितिं परिचरत कवि। शुश्रूषणेन सब प्रकार से दीति की परिचर्या करने लगे। परिचर्या का अर्थ होता है हमेशा किसी के आसपास रहना और उसके अनुकूल काम करना, इसको परिचर्या कहते हैं। परितः चरण परिचरण, जब किसी के आसपास ही हमेशा घुमा करे आदमी, चरण रहे, चले, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी वस्तुओं को दे, तो इसको परिचर्या कहते हैं। तो इंद्र भगवान भेष बदल करके आए और दीति की परिचर्या करने लगे। शुश्रूषणेन सेवा द्वारा परिचर्या करने लगे। परिचर्या मतलब निकट में थे, कई चीजें जुटाते थे, लेकिन शुश्रूषणेन सेवा के लिए उसको वास्तव में जिस चीज की जरूरत थी उसकी सप्लाई करते थे, देते थे। तो क्या क्या देते थे? नित्यम वनात् मनसः फल मूल समित कुसान पत्रांकुर मृदोपश्च काले काले उपाहरत। पूजा में जिन जिन वस्तुओं की जरूरत थी इंद्र विशेष रूप से सब जुटाते थे। नित्य ही वन से फूल लाते थे, फूल, फल, मूल और समिधा और कुश, इसके साथ पत्ते, अंकुर, दुर्वा दल आदि, और मिट्टी और जल, शुद्ध मिट्टी और जल आदि ये लाते थे, जुटाते थे। तो नित्य वन से पुष्प लाते थे माला बनाने के लिए भगवान के लिए। जब दीति पूजा करती थी भगवान की तो इन सब वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी। नित्यम बनात सुमन से वन से इंद्र पुष्प लाते थे, फल अनेक प्रकार के और मूल और हवन करने के लिए लकड़ी और कुश घास और पत्र, पत्ते, अंकुर, मिट्टी और अपह जल, जल लाते थे, रोज जुटाते थे। काले काले उपहार जब जब जरूरत पड़ती थी तब तब ये लाते थे। कोई चीज 24 घंटे में एक बार ला देते थे और कोई कोई चीज जब जब पूजा में जरूरत पड़ती थी तो ला ला करके दिया करते थे। बहुत एक्सपर्ट थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तब इंद्र भगवान स्वर्ग छोड़ करके आ गए थे। वो स्वर्ग में भी रहते हैं परंतु काय व्यूह रूप से दीति की भी सेवा कर रहे थे। दीति की सेवा कर रहे थे दीति के बच्चे का हनन करने के लिए, इस तरह से कपट वेश में। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरिर्निरप प्रेप्सु परिचर जिमो मृगहेव मृगाकृति। जैसे मृग का वध करने की इच्छा से व्याध बहेलिया कभी कभी मृग का आकार धारण करके और उसके पास आता है, मृगाकृति मृग का आकार धारण करके आता है मृग का वध करने के लिए। तो इस प्रकार दीति के सेवक का रूप धारण करके इंद्र भगवान ऐसा कपट वेश धारण करके दीति की सेवा कर रहे थे। एवं तस्य व्रतस्थ है, वो व्रत में स्थित थी, नियम पालन कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो हरि इंद्र हे महाराज परीक्षित नृप संबोधन कर रहे हैं, जैसे राजा लोग अपने शत्रु के छिद्र को, दोष को, कमी को पा करके उस पर अटैक करते हैं, तो इस तरह से इंद्र अपने शत्रु दीति के व्रत में कमी का शोधन कर रहे थे, कब कोई कमी आएगी तो मैं इसके बच्चे की हत्या करूंगा। व्रत छिद्रम प्रेप्सु, हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि कब कहां कोई कमी आती है। परचर जिम्न, वो कपट वेश में कपट पूर्ण सेवा कर रहे थे, तो कभी कभी ऐसा जहां जैसे यहां लिखा गया है तो पता चलता है कि कोई बहेलिया मृग का आकार धारण करके और मृग की बोली भी बोलता है, तो मृग को विश्वास हो जाता है कि ये तो हमारी ही जाति का कोई है पशु हमारा, और निकट आता है मिलने के लिए तो बाण मार देता है उसके हृदय में। तो ये उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि मृगहा मृगा कृति ही जथा, मृग का वध करने वाले जैसे मृग का आकार धारण कर लेता है, इस तरह से इंद्र सेवा कर रहे थे दीति की। परंतु बहुत काल तक सेवा किए सब और कभी भी कोई कमी नहीं आई। दीति को जब जगना था, जैसे मान लीजिए भोर में अगर उसे 3:30 बजे जगना था, तो कभी भी एक सेकंड भी देर नहीं की, उसे अलार्म नहीं लगाना पड़ता था, बिल्कुल कंप्लीट ठीक टाइम से जग जाना, जग करके तो क्या क्या पूजा करनी है भगवान की, वो सब पूजा प्रारंभ करना ठीक टाइम पर पंक्चुअल और रेगुलर और तत्परता से करती थी। भगवान इंद्र बहुत भारी चिंता में पड़ते जा रहे थे कि इसकी भक्ति चर्चा में पुंसवन व्रत के अनुष्ठान में कोई त्रुटि विच्युति नहीं आ रही है, बहुत चिंता में पड़ रहे थे। नाध्य गच्छत व्रत छिद्रम तत्परोथ महीपते, हे महीपते, हे पृथ्वी के पालक महाराज परीक्षित, तत्परह अथ अपि दीति का छिद्र अन्वेषण करने में वे बिल्कुल तत्पर थे, रात दिन लगे रहते थे कब कमी मिले, लेकिन ऐसे सावधान रहने पर भी व्रत छिद्रम न अध्यगच्छत, व्रत में कमी कहीं नहीं आई। तब तो चिंताम तीव्राम गतः शक्र, घोर चिंता में पड़ गए, चिंता तो थे कि अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, अब तो मैं मरूंगा क्योंकि व्रत में कोई कमी नहीं आ रही है। यह भी भगवान इंद्र का कितना बड़ा ज्ञान है समझना चाहिए। कभी कभी बड़े लोगों में भी अकस्मात कोई बात समझ में नहीं आती। इंद्र एक भक्त हैं और भगवान की भक्ति की महिमा को पूरा जानते हैं, फिर भी इनको अभय हो रहा है। इनको तो जानना चाहिए था कि दीति यदि व्रत का पालन कर रही है और पूरा अच्छा से करेगी तब तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, मेरे प्रति द्वेष निकल जाएगा उसके मन से, ये मुझे नहीं मारे मारने का संकल्प रखेगी, पर इस बात को वो हड़बड़ाहट में भूल गए थे। वो जानते हैं जहां तक आगे आप सुनेंगे किस प्रकार दीति से भक्ति का उपदेश किए हैं, तो कभी कभी जल्दी में घबराहट में व्यक्ति किसी सत्य को समझ नहीं पाता। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति के गले में कंठ मणि थी, लेकिन उसको ऐसा ध्यान आ गया कि कहीं मैं रख दिया था, तो कंठ मणि जो कंठ में पहना हुआ है वो न वहां देख करके तो अलमीरा खोल करके देखता है, कबाड़ में देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, लेकिन है उसके कंठ में। तो कोई व्यक्ति पूछे कि आप क्या खोज रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं अपने कंठ का आभूषण खोज रहा हूं, पता नहीं कहाँ खो दिया, कहाँ रख दिया, क्या हुआ क्या। तो सामने वाला कोई व्यक्ति उसको कहे कि अरे क्या ये कंठ में पड़ा हुआ, इसको खोज रहे हैं, तो आदमी कहेगा अरे मैं तो भूल गया था, ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है। जिसको कंठमणि न्याय कहते हैं संस्कृत में। भगवान इंद्र भक्ति के उपदेशक हैं, भगवान के प्रिय हैं, लेकिन घबरा रहे हैं कि दीति यदि व्रत पूरा कर लेगी तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मारा जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है, जब वैष्णव व्रत कर रही है तो दीति ही आपके माँ जैसा बन जाएगी, उसका हृदय का कलुष सब धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, इस बात का अनुसंधान नहीं कर रहे थे। जब भगवान के भक्ति के प्रभाव का अनुसंधान नहीं था तो चिंताम तीव्राम गतः शक्र, वो अत्यंत दुखद चिंता में पड़ गए और सोच रहे थे के न मे शिवम त्विह, अब इस अवसर पर या इस जीवन में मेरा अब शिवम कैसे, कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे जीऊंगा। कश्यप जी जैसा महातेजस्वी ब्राह्मण, उनके पिताजी वचन दे चुके हैं और वो मांगी है, गर्भवती भी हो गई और व्रत का पालन भी ठीक से कर रही है, तब तो मुझे मरना ही है। इस चिंता में वे रात दिन पड़े रहते थे। किसी व्यक्ति को ये पता चले कि उसको मारने वाला जन्म ले चुका है और कभी भी मारेगा, तो क्या उसे भूख लगेगी, नींद लगेगी? जो पृथ्वी पर दशा है वही स्वर्ग में भी दशा है। जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इंद्र इतने बड़े देवता हैं, देवराज कहे जाते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अपने जीवन की इतनी चिंता होने लगी। केन मे स्यात् शिवम त्विह, मेरा कार्य कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, बहुत चिंता में रहते थे। लेकिन किस तरह दीति के व्रत में कमी आई इसको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। एकदा सा तु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत कर्षिता अस्पृष्ट वार्य धौतांघ्री सुस्वाप विधिमोहिता। एक दिन की बात है, दीति संध्या के समय सो गई, सूर्यास्त हो रहा था, उसे नींद आ गई, जो कि पहले निषेध किया गया था कि शाम के समय नहीं सोना है, सूर्य उगते समय या डूबते समय नहीं सोना है। तो सूर्य डूब रहा था, शाम का समय था और दीति को निद्रा आ गई। क्यों आ गई? व्रत कर सीता, बेचारी व्रत करते करते दुबली हो गई थी, कमजोर हो गई थी, तो शरीर में अपार तेज था, सौंदर्य था, लेकिन शरीर कमजोर हो गया था। उपवास करते करते, भगवान का जप करते, पूजा करते, ठीक से सोना नहीं, ये नहीं, तो दुबली हो गई थी, थक गई थी, अतः जप करते करते ही सो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नींद आ गई शाम के समय। तो एक तो गलत सोई और उच्छिष्टा, कुछ खाई थी और खा करके उसने आचमन नहीं किया, खुला नहीं किया, मुंह नहीं धोया, वैसे ही हाथ में भी कुछ प्रसाद लगा था और मुख में भी ऐसे ही सो गई। उच्छिष्टा और अस्पृष्ट वारी अधोतांगरी, उसने जल का स्पर्श नहीं किया, अर्थात कुल्ला नहीं किया, मुंह नहीं धोया और चरण भी नहीं धोया, सुस्वाप वो बस सो गई शाम को, विधि मोहिता। वास्तव में इंद्र के प्रारब्ध से या विधाता की इच्छा से वो मोहित थी। दो कारण थे, एक तो व्रत करके थक गई थी, कमजोर हो गई थी, तो अपने आप नींद आ गई, और विधाता की ऐसी इच्छा थी, विधि मोहिता, ईश्वर की ऐसी इच्छा, वो सो गई। साल भर तक अखंड निर्विघ्न व्रत का पालन की थी, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रा प्रहृत चेतसः, और ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई दीति को कि निद्रा अपहृत चेत सा, उसकी चेतना पूरी पूरी चली गई, मतलब होश में नहीं रही, गाढ़ है सुसुप्ति में, निद्रा में पड़ गई। तो भगवान इंद्र को ये अवसर मिला, व्रत में कमी मिली, तो वे दिते प्रविष्ट उद्रम योगेशो योग माया। तो इंद्र योग के स्वामी हैं, योग शक्तियों के, अणिमा लघिमा आदि शक्तियों के स्वामी हैं। तो अपनी योग माया से, योग शक्ति से वे दिति के उदर में प्रवेश कर गए, दिति के मुख में प्रवेश किया, और मुख के बाद वे जहां बच्चा था उदर में चले गए अपनी शक्ति से। पर काय प्रवेश आदि सिद्धियां उनको थी, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे, इसको पर काय प्रवेश कहते। योगेशो योग माया, जब योगेश है ही, योग शक्तियों के ईश्वर है, जैसे अणिमा सिद्धि है, अणु से अणु हो जाना, छोटा से छोटा हो जाना, इतना छोटा हो गए कि वे दीति के गर्भ में पहुंच गए, चले गए उसके मुख से, और वज्र लेकर के गए बच्चे को मारने के लिए, प्रवेश कर गए। चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्त एवैकम मारोदी रितितान पुनः। और गर्भ में जाते ही उन्होंने देखा बच्चा कैसा है, कुमार कैसा है, कनक प्रभम प्रदीप्त सोने की तरह जगमग कर रहा था, गोल्ड की तरह, भगवान की भक्ति से वो बच्चा पैदा हो रहा था, इसलिए निष्कलुष अद्भुत तेज था उसके शरीर में। उसकी माँ ने भगवान का भजन किया था, साल भर लगातार जप की थी, भगवान का ध्यान पूजा आदि, इस कारण से कनक प्रभम, कनक जैसी प्रभा उस बच्चे के शरीर में थी। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसमें अद्भुत तेज और सौंदर्य है। तो इंद्र देखे, और देखे तो और चिंता पड़ गए कि यह तो इतना तेजस्वी बालक है कि निश्चित मेरा वध करेगा, इसलिए वे अपने वज्र लिए, और वज्र से प्रहार किए उस बच्चे पर। तो उसमें छह धार है, छह जगह पर से धार है। जब उन्होंने इसे घुमा करके, मोशन बना करके और चलाया, तो घर घर घूमते हुए उस छह जगह पर बच्चे को काट दिया, तो सात टुकड़ा हो गया। छह जगह जब काटा गया, बहुत तेज गति से काटता है वज्र। गीता में भगवान ने कहा है, आयुधा नाम हम वज्र, आयुधों में, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। इसका मतलब सबसे घातक वज्र है, अमोघ अस्त्र है, सबसे घातक अस्त्र है, अमोघ है, कभी विफल नहीं हो सकता। और ऐसे असह्य वज्र को इंद्र उस बच्चे पर मार रहे हैं। उनके मन में यह विचार था कि यह बहुत बलवान है और वरदान से उत्पन्न हो रहा है, देखने में बहुत बड़ा तेजस्वी है, अतः वज्र में मोशन बना करके, गति बना करके इसको मारना है। तो मारे, तो चकर्त सप्तधा, सात खंड में काट दिए उस बच्चे को। देवराज इंद्र होकर के, देवता होकर के इस प्रकार से क्रूर विचार से युक्त हो गए। जीने की लालसा जीव के हृदय में ऐसी रहती है, उसमें बाधा देने वाला कोई भी व्यक्ति उसके सामने सही नहीं होता है, हमारे जीने में बाधा देगा, इसलिए इसको मारना है। देवता होकर के भी असुर जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो कोई असुर करेगा, लेकिन जीने की लालसा ने, स्वार्थ ने देवराज इंद्र के चित्त को विभ्रांत कर दिया और मारे। जब सात टुकड़े में शरीर को काटे, तो इस सातों टुकड़ा फिर ओरिजिनल बच्चा जैसा कंप्लीट हो गया, सात बच्चे हो गए, सात टुकड़े में काटने पर सात बच्चे हो गए, और ठीक ओरिजिनल बच्चे जैसे, कोई अंतर नहीं। और शरीर पर चूंकि आघात हुआ था, दर्द हुआ, तो उस पीड़ा से व्याकुल होकर के सातों बच्चे रोने लगे। तो इंद्र तो और डर गए कि कहीं ये सातों रोने लगेंगे तो ये जग जाएगी, दीति जग जाएगी और इसके बाद हमें साप दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वे एक उपलालन का नाटक करते हुए कहते हैं, मारुद मारुद मारुदी, तुम मत रोवो मत रोवो, ऐसा सबको सांत्वना देते हैं, मत रोवो। और एक कहते हुए फिर वज्र को एक एक लड़के पर चला दिए, तो फिर सात सात टुकड़े में हुए, तो सातों बच्चे फिर 49 हो गए और ओरिजिनल बच्चे जैसे एकदम कंप्लीट, कहीं कोई घाव नहीं, कुछ नहीं। जब भगवान इंद्र ने देखा अद्भुत प्रभाव, जिसका वध किया जा रहा है वो सात हो गया और 7 से 49 हो गया, तो भगवान इंद्र अब घबरा गए, ये बच्चा मरेगा नहीं। जब 7 टुकड़ा कर दिए बच्चे का, 7 बच्चे हुए, तो वे रोने लगे, तो उनको इंद्र ने कहा, मां रो दे मत रोवो, इसी से उनको मरुत कहते हैं, मरुत, रोवो मत। इंद्र भगवान चुप चुप कर रहे हैं, रो मत, इतना कठोर हृदय है, वध करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से मना रहे कि रो मत, जैसे बच्चे चुप हो जाए, नहीं तो उनकी मां जग जाएगी। और अभी दीति को कुछ भी पता नहीं है कि उसके पेट में इंद्र प्रवेश किए हैं और उसके बच्चे को मार रहे हैं, ये सब कला है। इतना बारीक ढंग से इंद्र मार रहे थे कि सोई हुई स्त्री को कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ गर्भ में, ऐसा नहीं था कि कोई दवा खिला दिए हैं बेहोश करने वाले, जैसे ऑपरेशन के समय खिलाया जाता है या सुंघाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं किए थे। इस प्रकार से पहले के अस्त्र शस्त्र में नियम होता था, जितनी गति से मारना होता था उतनी गति से जाता था, यहां तक कि जिस व्यक्ति को मारना है केवल उसी को मारता था, लाखों के सभा में लोग बैठा हुआ व्यक्ति केवल वही भर मारा जाता था जिसको लक्ष्य किया जाता था। आजकल जैसा ब्लाइंड वीपन नहीं बना, कहीं भी मारो, कोई भी मर जाए, रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट करते हैं, बम ब्लास्ट, कभी कहीं 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 कहीं, कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पहले के महारथी लोग, पहले के योद्धा ऐसे नहीं होते थे, वे अपने शत्रु को मारते थे और जिसको लक्ष्य करके मारते थे वही मारा जाता था, सब लोग नहीं। तो आप जरा विचार कीजिए कि एक स्त्री के गर्भ में वज्र मारा जा रहा है, जानते हो वज्र का एक बहिरंग प्रभाव देखा जाता है, जब बिजली तड़पती है और वज्रपात कहते ही है उसको, थंडरबोल्ट गिरता है, कितनी आवाज होती है, कितना उसमें तेज होता है प्रकाश, वो मारा जा रहा है दीति के बच्चे पर दीति की नींद खुल नहीं रही, इसके पेट में उसको कोई पीड़ा नहीं है, बच्चों को पीड़ा हुई तो वे रोने लगे, तो इंद्र चुप करा रहे, मारो दी मारुतम रो रो मत। और फिर सातों बच्चों पर आघात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मत रो। जब 7 बच्चों को मारने चले तो वे सभी हाथ जोड़ करके बोले, ते तमुचु पाठ्यमाना सर्वे प्राणजलयोनि पर, सभी हे महाराज परीक्षित, वे सभी बच्चे हाथ जोड़ करके इंद्र से कहे, नो जिघांस से किम इंद्र भ्रातरो मरुतस्तव। जब 49 हो गए तो फिर भी वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि इंद्र तव भ्रातर, हम तुम्हारे भाई हैं, हम मरुदगण तुम्हारे भाई हैं, तो न किम जिघांस से, क्यों हमारा वध करना चाहते हो भैया, हम तो तुम्हारे भाई हैं। इतना स्नेह से इतना दीन वचन बोले 49 भाई, इंद्र को दया आ गई सुनते ही, तो वे कहते हैं, मां भ्रष्ट भ्रातरो मह्यम जूयम इत्याह कौशिक, कुशिक वंश में जन्म लिए थे पहले इंद्र, इसलिए इनको कौशिक कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं भाईष्ट, जब तुम लोग मुझे भाई मानते हो और भाई तो हो ही, तो अब भय मत करो, मैं नहीं मारूंगा। मां भाईष्ट भ्रातरो मह्यम यूयम इति आह कौशिक। इंद्र ने कहा कि जब तुम लोग मुझे भाई कह रहे हो, इतना स्नेह प्रदर्शित कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, भय मत करो। उनके आवाज से भगवान इंद्र का भय बिल्कुल चला गया। उनका जो स्वर निकल रहा था, पहले तो ऐसा था कि जब वज्र मारेंगे तो हो सकता है कि वे न मरें और उल्टे हमको मारेंगे। कश्यप जी का वरदान था, वे मार सकते थे, कुछ कह सकते थे या साप दे सकते थे कि तुम भस्म हो जाओ, हमको मार रहे। लेकिन जब इतना प्यार का शब्द उन्होंने सुना इंद्र भगवान ने कि हम आपके भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, तब इंद्र देवता समझ गए कि इनमें कोई भी द्वेष बुद्धि मेरे प्रति नहीं है, वास्तव में स्नेह से बोल रहे हैं, भाषा बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भय मत करो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अनन्य भावान पार्षदान आत्मनो मरुताम गणान। इंद्र ने देखा कि ये हमसे अति स्नेह करने वाले हैं और ये हमारा पार्षद बनना चाहते हैं, ये 49 मरुद गण। तो इंद्र तो और फायदा में हो गए, वो आए थे मारने के लिए शत्रु समझ करके, लेकिन माता दिति के गर्भ में उन्हें जीवन में सबसे बड़े सहायक मित्र मिले 49, तो मारे नहीं। यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि दिति के गर्भ में जब एक बच्चा था तो शरीर को 7 टुकड़े काटने पर 7 बच्चा, और फिर एक एक को 7 खंड में बांटने पर 49 हो गए, तो क्या एक ही जीव 49 शरीर धारण किया कि 49 जीव उसमें आ गए तुरंत? तो कभी कभी तो काय व्यूह रूप से कोई योगी या कोई जीव बहुत जल्दी पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए अनेक शरीर धारण कर लेता है या उसे दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब दिति के पुत्र का शरीर काटा गया 7 खंड में, तो माया शक्ति के द्वारा, भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा 7 जीव तत्काल उसमें भर्ती किए गए। एक तो था ही पहले से और दूसरा 6-7, और जब 49 टुकड़े में हुआ तो 49 जीव उसमें डाले गए। यह भगवान के शक्ति की सटल व्यवस्था है सूक्ष्म, सब लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है। जैसे भगवान वेदव्यास देव के उपदेश से गंधारी का गर्भ है गिराया, असल में गंधारी को बहुत काल तक गर्भ रहा, वो बहुत पीड़ित थी, तो वेदव्यास देव के उपदेश से उसने अपने पेट पर एक पेट पर पत्थर मारा कुछ पीड़ा से व्याकुल होकर के, तो उसे गर्भपात हुआ, गर्भपात नहीं कहेंगे, प्रसव हुआ बच्चा, लेकिन एक मांस का टुकड़ा था। तो फिर उसको 100 टुकड़ा में खंडित किया गया और भगवान वेदव्यास देव ने कहा कि इसे घड़े में रखो, भिन्न भिन्न एक एक घड़े में, तो 100 पुत्र हो गए, वो शरीर डेवलप होकर के 100 पुत्र बना और एक लड़की दुर्योधन की एक बहन, तो 100 जीव वास्तव में उसमें आए। या इस लोक में भी हम लोग देखते हैं कोई लता या गुल में, या जैसे गन्ना है, गन्ना को कई टुकड़ा करके और रोपा जाता है तो प्रत्येक गन्ना अंकुरित होता है और बढ़ता है, तो अलग अलग उसमें जीव है। पहले जब गन्ना एक रहता है तो एक ही जीव उसमें रहता है, परंतु काट करके जब अलग अलग डाला जाता है तो भगवान की सूक्ष्म माया शक्ति की सूक्ष्म व्यवस्था है, उसमें जीव डाले जाते हैं और वो कई गन्ने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दीति के गर्भ में 49 बच्चे हुए। यह भगवान की एक सूक्ष्म व्यवस्था है, यह बिल्कुल संभव है, ओरिजिनल बालक हो गए। देवता में श्रेष्ठ इंद्र अपनी पूरी शक्ति से, अपने अस्त्र बल से युक्त होकर आए हैं और दीति के गर्भ पर प्रहार कर रहे हैं, परंतु गर्भ है मरा नहीं बल्कि 107 हुआ और 7 पर फिर आघात करने पर 49 हो गया। देखिए भगवान की शक्ति, कब क्या होगा, भगवान क्या चाहते हैं जानना बहुत कठिन होता है। तो भगवान इंद्र से वे कहने लगे कि हम आपके भाई हैं, हम आपके प्रेमी हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं। तब इंद्र कहते हैं कि ठीक है भय मत करो, मैं नहीं मारूंगा। तो दीति का गर्भ नहीं मरा, क्यों नहीं मरा, अमोघ वज्र मारा जा रहा है और मारने वाला इतना बड़ा बलवान व्यक्ति देवराज इंद्र मार रहे हैं, और वो भी बच्चा अपने माँ के उदर में है, कितना टेंडर, कितना डेलिकेट शरीर होगा, कितना कोमल, लेकिन फिर भी नहीं मरा। क्यों? न ममार दितेर गर्भ श्री निवासानुकंपाय, एक ही कारण है, लक्ष्मीपति भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे, भगवान श्रीनिवास की अनुकंपा से नहीं मारा। अनुकंपा मतलब सहज दया, वात्सल्य भाव। और दृष्टांत देते हैं, जैसे द्रोणी के अस्त्र से, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आप नहीं मारे गए, यद्यपि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया उत्तरा के गर्भ पर, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण रक्षा कर रहे थे, इसलिए आप नहीं मरे। परीक्षित महाराज गर्भ में थे, तो दीति के गर्भस्थ शिशु पर आघात किया गया है, अतः ये घटना सुखदेव गोस्वामी को तुरंत याद आ गई। आप भी जब गर्भ में थे तो आप पर बहुत बड़े अस्त्र से आघात किया गया था, ब्रह्मास्त्र से, लेकिन आप नहीं मरे। बहुधा कुलिशक छूण, यद्यपि वज्र के द्वारा शरीर कई जगह काटा गया, 6 जगह काटा गया था, जीने का कहां प्रश्न था, और रियली में काट दिया गया, ऐसा नहीं हुआ केवल काटने जा रहा था, 6 जगह टुकड़ा टुकड़ा किया गया, परंतु वो 7 टुकड़े वाला, 7 टुकड़ा पुनः ओरिजिनल बच्चा जैसा हो गया। क्यों हुआ, क्या कोई कारण सोचे, कैसे बच गया, क्या वो बचने की स्थिति थी। पर श्री निवास तो कुछ भी कर सकते हैं, श्री का अर्थ लक्ष्मी जी और निवास का अर्थ वास करती हैं, भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी वास करते हैं, तो भगवान को श्री निवास कहते हैं। यह श्री का अर्थ है सौभाग्य, श्री का अर्थ सफलता, सुख, जो भी सुख है, सौभाग्य है, सब कुछ भगवान में निवास करता है, इसीलिए उनको श्री निवास कहते हैं। श्री जी भगवान के आश्रय में रहती हैं। किसी व्यक्ति को यदि सौभाग्य चाहिए, धन चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, विद्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसे भगवान की शरण में आना चाहिए, भगवान में ही श्री वास करती है, तो इसलिए उनको श्रीनिवास कहते हैं। तो श्रीनिवास की अनुकंपा से दीति का गर्भ न मारा, नहीं मारा, भगवान कहीं भी रक्षा कर लेते। कौन रक्षा करने गया वहां पर, मां बेचारी बेहोश निद्रा में पड़ी हुई है, पिता को पता नहीं है, बच्चा गर्भ में है, कौन रक्षा किया, श्रीनिवास रक्षा किए, भगवान रक्षा करते हैं। और अन्य बच्चों की भी जो रक्षा हो रही है, गर्भ में 9-10 महीने तक बच्चा रहता है, उसको भोजन देना, पानी देना, जिला करके लाना, ये सब भगवान का ही काम है, वास्तव में भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना कमेंट दे रहे हैं कि माँ न ममार दितेर गर्भ श्री निवासानुकंपा, श्री निवास की अनुकंपा से बच्चा बच गया, नहीं मरा। जैसे आप यथा भवान, आपकी रक्षा कौन किया था गर्भ में? जब आप गर्भ में थे तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था, आपको जैसे भगवान ने बचाया, श्रीनिवास ने बचाया, वैसे दीति के बच्चे को श्रीनिवास ने बचाया, जबकि वो कई जगह पर काटा गया था। बहुधा कुलिशक छूणा, छूणा का अर्थ छिन्न भिन्न, और कुलिश माने वज्र, वज्र के द्वारा मारा गया था। ये बहुत ही आश्वासनदायक ये विवरण है, भगवान की कृपा से बच्चा वज्र के द्वारा मारे जाने पर भी बच गया, नहीं मरा। भगवान के महत्ता, भगवान के महाप्रभाव को समझने के लिए प्रसंग है। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं कोई बचा नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के कहावत है। यदि कृष्ण मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता है, और कृष्ण यदि बचाना चाहे तो दुनिया लगी रहेगी, वो व्यक्ति नहीं मार सकता है। ये तो कितना बड़ा उदाहरण है कि बच्चा इस तरह से असहाय अवस्था में माँ के गर्भ में है, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई हाथ पैर का संचालन नहीं हो सकता, कहीं भाग नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र मारा जा रहा है, और मारने वाला भी देवताओं का नायक है, महान शक्तिशाली, जिस वज्र के प्रभाव से पर्वत भी विदीर्ण हो जाते हैं, वृत्रासुर जिस वज्र से मारा गया, और भी कितने लोग बड़े बड़े असुर मारे जाते हैं, पर वह वज्र दीति के गर्भस्थ शिशु का कुछ भी नहीं कर पाया। प्रभाव डाला, काट दिया, लेकिन बच्चा मारा नहीं, जीत गया। और इंद्र भगवान अगर और मारे होते तो कई हजार हो गए होते, तो वहीं वो रोक दिए। और उनको ये भी भय हो गया कि मैं अपराध कर रहा हूं, भगवान के भक्त का वध करना चाहता हूं, नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात को कैमुत्य न्याय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सकृत इष्टवादि पुरुषम पुरुषो जाति सात्मताम साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम दित्या जद हरिरार्चितः सजुर इंद्रेण पंचाशत देवास्ते मरुतो भवन व्यपोहि मातृदोषं ते हरिणा सोमपाह कृतः। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी सकृत, सकृत का अर्थ है एक बार, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार भी आदि पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करता है, इष्टवा, यदि भगवान का जीवन में एक बार एक दिन भी पूजा कर दिया तो वह व्यक्ति भगवान के स्वरूपता को प्राप्त करता है। भगवान जैसा उसका शरीर बनता है, उस शरीर मिलता है, भगवान जैसा वैभव और भगवान जैसा स्वभाव, उसको स्वरूप मुक्ति मिलती है, भगवान के धाम में रहने का अवसर मिलता है, भगवान के साथ साथ रहना, उनका दर्शन करना, ऐसा इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है किसको? सकृत इष्टवा। एक बार भी अगर भगवान की पूजा किया तो उसे भगवान का स्वरूप मिलता है, भगवान के निकट रहने का सौभाग्य मिलता है। तो बताइए, जब एक दिन पूजा करने का ये सौभाग्य मिलता है तो दीति तो साल भर तक भगवान का साथ की, भगवान की पूजा की, किंचिदूनम जिसमें नाम मात्र की न्यूनता थी, कंप्लीट भजन किया, खूब जप किया, भगवान का पूजन किया, ध्यान किया, लगी रही रात दिन बेचारी इस तरह भगवान में। तो यही कारण है कि कमुत ने कहते जब साल भर लगातार लगी रही तो उसके बेटे यदि इंद्र के साथ देवता हो गए तो कौन आश्चर्य की बात। नहीं मरे, देवता हो गए, कौन आश्चर्य की बात है। सकृत इष्टवादि पुरुष आदि पुरुष श्री भगवान को कहते हैं, वो आदि पुरुष है, सभी जीवों के जन्मदाता है, जन्म भी देते हैं, पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं केवल जन्म दे दिया और पालन दूसरा करेगा, भगवान पालन करते हैं। पालन करने के लिए भूमि बनाए हैं, हवा पानी सब कुछ बनाए भगवान, पालन करने के लिए मेंटेनेंस के लिए सब व्यवस्था होती है। पृथ्वी में अनेक वस्तुएं रख दिए हैं जिसको जीव खाता है, पहनता है, या पृथ्वी से घर बनाता है। भगवान की अद्भुत विराट व्यवस्था है सबको जिलाने के लिए, खिलाने के लिए, और सबके मूल वही हैं, वे सबके जन्मदाता हैं और सबके पालन करता हैं, तो उनको आदि पुरुष कहते हैं। तो ऐसे आदि पुरुष से का जरा प्रभाव देखिए यहां, जिनका एक बार पूजन करने वाला व्यक्ति उनके स्वरूपता को प्राप्त करता है, भगवान अपने समान बना लेते हैं उसको, अपने समान सुखी बना लेते हैं। ये भगवान की इतनी उदारता है, एक दिन की पूजा से ऐसा करते हैं। तो फिर जिस स्त्री ने साल भर भगवान के का पूजन किया, तो उसके पुत्रों को यदि भगवान देवता बना दें तो कौन बड़े अचरज की बात है, और अमर बना दे, और वो भी किंचित ऊनम, थोड़ी सी कमी उसमें रही, बस एक दिन केवल हाथ पैर न धो करके जूठे में सो गई, बस इतना ही कमी हुई। ये कोई कमी थोड़े है, भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं होती है। जे जीव को जो भी योग्यता प्राप्त है, जो भी भाषा जानता है, जितनी सकते उतना करे, वही काफी है। भगवान कमी नहीं देखते हैं कभी भी, कमी पर विचार नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, छोटा सा बेटा है, और अपने पिता की सेवा करना चाहता है, तो पिता के लिए वो पीढ़ा उठा करके लाता है, या गिलास में पानी लावे, और पानी अगर लेकर के पिता के पास न भी पहुंचे, वो गिलास गिर जाए, फिर भी पिता कभी क्या दोष बुद्धि करेगा कि अरे इसको सेवा नहीं करने आया, कभी नहीं सोचेगा। बल्कि उसके लड़खड़ाते हुए पैर से चलना, गिलास टांगने के उपक्रम को देख करके वो खुश होगा कि बेटे का भाव अच्छा है, मेरी सेवा करना चाहता है। तो इसी तरह भगवान तो अनंत पिता का हृदय रखते हैं। कोई जीव अगर भगवान की भक्ति करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो भले उसमें कमी हो, लेकिन अगर भाव है कि मैं पूजा करूंगा, तो भगवान उसकी कमी को नहीं देखते। एक दिन की पूजा करने पर सकृत इष्टवा, एक दिन और एक बार पूजा करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने जैसा सुखी बनाते हैं उस जीव को। तो दीति ने तो अखंड रूप से साल भर भगवान की भक्ति किया था। संवत्सरम किंच दुन्नम दित्या जद हरिर अर्चिता सजुर इंद्रेण पंचाशत, इंद्रेण सजु, सजु माने सह, साथ होता है, इंद्र के साथ ये 49 मरुदगण 50 हो गए, इंद्र इंद्र एक और 49 ए, सजुर इंद्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन, ये मरुदगण इनका नाम हुआ, और इंद्र देवता के साथ मिलकर ये 50 देवता हुए। व्यपोह मातृदोषम ते हरिणा सोम पाकृता, व्यपोह मातृदोषम, मातृदोष का निवारण कर दिया भगवान हरि ने, कृष्ण ने, विष्णु ने निवारण कर दिया। मां में क्या दोष था, सपत्न दोष था, दोष यह था कि दिति के प्रति इसके मन में, अदिति के प्रति इसके मन में बैर था, कि अदिति के पुत्र इंद्र ने हमारे पुत्रों को, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मरवाया है। इन 49 पुत्रों के मां में यह दोष था, मातृदोष या आसुर भाव जो भी था, तो उसको व्यपोह्य भगवान विष्णु ने उसे दूर कर दिया, अथवा इंद्र ने दूर कर दिया, जो भी कहा जाए। यहां पर हरि शब्द दिया गया है तो भगवान विष्णु ही अर्थ होगा। तो भगवान ने मातृदोष दूर करा करके और इन 49 मरुदगण को सोमपाह कृता, इनको यज्ञ भाग ग्रहण करने वाला बना दिए। यज्ञ किया जाता है इन देवताओं के लिए, यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं। कहां असुर वंश में जन्म हुआ, दैत्य वंश में जन्म हुआ, लेकिन ये देवता हो गए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ही हुआ। वैसे तो दीति ने जिस तरह से व्रत किया है, तो उसके कारण ये सारे मरुदगण भगवान के धाम के अधिकारी हैं। तो फिर देवता हुए तो ये कौन बड़ी बात है। सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, सजूर इंद्रेण पंचाश देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह मातृ दोषम ते हरिणा सोमपा कृता। हरि के द्वारा ये सोम रस के अधिकारी बनाए गए, मतलब यज्ञ भाग ग्रहण करता बनाए गए। देवताओं में भी श्रेष्ठ देवता है, और इंद्र के बिल्कुल समान आसन पर बैठते हैं 49, इनके साथ ही इंद्र रहते हैं। जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, कथम त आश्रम भावम अपोहि औत्पत्तिकम गुरु, हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, आसुर भाव को छोड़ करके ये देवता कैसे हो गए। इसके उत्तर में यही आ रहा है कि यह है भगवान के भजन का प्रभाव। माता दीति ने भक्ति किया भगवान की, तो उसके भजन के प्रभाव से बच्चे इतने शुद्ध हो गए और देवता हो गए। यही तो लाभ है भगवान की भक्ति में। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी भक्ति करता है, तो उसके कारण है परिवार के सारे लोग भगवान के कृपा के भाजन बनते हैं। भगवान का स्वभाव है अपने भक्त के परिवार संबंधी देश आदि को सुखी करते हैं। जैसे दीति ने व्रत किया, तो उसके बच्चे को क्या पता था कि माँ भजन कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है। लेकिन बच्चा बहुत भाग्यशाली था, ऐसे माँ के गर्भ में था जो माँ भगवान की भक्ति कर रही है। तो दीति के भजन का प्रभाव बच्चों पर हुआ। मरे नहीं बच्चे एक अलग चीज है, यह भी देखिए भजन का प्रभाव, मरे नहीं। और दूसरा महाप्रभाव के देवता हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि जीवित रह गए और असुर बन करके शराब आदि पीते हैं और जी रहे और हिंसक काम करते। जी तो गए, मरे नहीं, और जी करके देवता बने, सोमपाह कृता। जब इंद्र के साथ वे 49 लड़के हुए, तो बाहर आए इंद्र के साथ। ये सब अलौकिक शक्ति द्वारा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब माँ दीति ने प्रसव किया। योग बल से जब इंद्र ऐसे प्रवेश कर सकते थे और बच्चे भगवान की भक्ति से उत्पन्न हुए थे, तो प्रकट हो गए इंद्र के साथ। और 50 का व्यवहार बता रहा था 49 का, कि इंद्र के साथ उनका बहुत प्रेम है। जो इंद्र इनकी हत्या करने के लिए आए थे, इसकी हत्या ये कहीं बच्चे को कहेंगे, उनको क्या पता था कि 49 हो जाएंगे। इस बच्चे की हत्या करने आए थे, उसी बच्चे के साथ या उन्हीं बच्चों के साथ वे माँ अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, बाहर आए। और जब बाहर आए 50 खड़े थे, खूब सुंदर देवता के समान सुंदर रूप वाले। जब खड़े थे तब दीति की नींद खुली। ये सारी लीला जब हो गई, बंधुत्व स्थापित हो गया, परस्पर प्रेम हो गया, ये बच्चा उत्पन्न किया जा रहा था इंद्र को मारने के लिए, और इंद्र आए थे इसको मारने के लिए, लेकिन खेल बिल्कुल दूसरा हो गया। ये परस्पर मित्र बन गए, अतिशय स्नेहवान बन गए, जीवन भर साथ रहने वाले बन। तो जब वे प्रकट हुए और अदिति की नींद, दीति की नींद खुली, तो दीति रुत्थाय दद्र से कुमारान अनल प्रभान। दीति उठी, जब उसने आंखें खोला जब दिति ने आंखें खोली तो देखी कुमारों को देखी, अनलप प्रभा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र से 49 और वो भी इंद्रेण सहितान, इंद्र के साथ, जिस इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रहे थे उसी इंद्र के साथ ये 49 कुमार खड़े, कुमार शिशु नहीं। देवलोक में शक्ति होती है, बिल्कुल युवक या किशोर अवस्था में बच्चे पैदा होते हैं। यहां जैसे नहीं हॉस्पिटल ले जाओ और पोलियो का टीका लगाओ, सुई लगाओ, ये करो वो करो, ये देवलोक में सब नहीं है। ये सारी जो बुराइयां है वास्तव में रोग दुख आदि मनुष्य लोक में है, यहां पर है, स्वर्ग में सब नहीं। तो प्रकट हुए बच्चे, दिति ने देखा इंद्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यत, यहां पर संबोधन कर रहे हैं देवी, वास्तव में दिति देवी थी, द्योतमाना पूज्या, और पर्यतुष्यत बहुत प्रसन्न हुई, परी अतुष्यत तुष्ट संतुष्ट हो गई, जो इंद्र के साथ देखी अपने बच्चों को तो बहुत संतुष्ट हो गई। इतना तो समझ गई कि ये हमारे गर्भ से बच्चे जन्म लिए हैं और इंद्र साथ में है, तो बहुत संतुष्ट हुई, क्योंकि अनिंदिता अनिंदिता भगवान की भक्ति करने से उसका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो चुका था। कोई भी ऐसा विचार दिति के हृदय में नहीं था जिसके लिए निंदा की जा सके कि अरे दिति का विचार ठीक नहीं है, ये नहीं होने, अनिंदिता पूर्ण शुद्ध पूर्ण प्रशंसा का पात्र थी दिति। सब तरह से इसके जीवन में शुद्धि थी, कालुष से कुछ नहीं था। आप कल की कथा पर ध्यान दीजिए कि कश्यप जी क्या क्या कह रहे थे कि स्त्री के हृदय में क्रूरता रहती है, ये रहता है, वो रहता है, लेकिन जो कुछ भी रहा हो वो बात सही थी जो बोले थे, लेकिन इसने भगवान की भक्ति किया, भगवान का जप किया, तो इसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भी अनिंदिता कह रहे हैं। पहले कश्यप जी ने कहा था वरम बरे बामुर प्रीतस्ते हम अनिंदिते, हे अनिंदिते मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे जीवन में कोई औघ कोई पाप कोई गलती नहीं हुआ है। और यहां श्री सुखदेव गोस्वामी खुलम खुला कह रहे हैं कि अनिंदिता, वास्तव में दीति बिल्कुल शुद्ध हो गई थी, भगवान की भक्ति से पूर्ण थी, इसलिए उसे अनिंदिता कहा जा रहा है। तो पर्यतुष्य तो बहुत खुश हुई, पहले बहुत कठोर हृदय से द्वेषपूर्ण हृदय से वो इंद्र का वध कराना चाहती थी और पुत्र चाहती थी, और आज उसी इंद्र को सामने देखी है बच्चों के साथ, तो पर्यतुष्य बहुत प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है। देखिए भक्तिपूर्ण जीवन में और भक्तिहीन जीवन में कितना अंतर होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसके मन में यही रहता है, उसको मारो, उसको लूटो, ये करो वो करो, ये करो ये करो, ऐसा करो, यहाँ बम विस्फोट कर दो, वहां मारो लोगों को, उसका धन छीन लो, ये करो वो करो, इन्हीं सब विचारों में रहता है। लेकिन यदि सच्चा रूप से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए, सच्चा रूप से मतलब कहने का मतलब भाव से लग जाए, भले जीवन में दोष है, अगर भगवान का नाम जप करने लगा, भगवान को प्रणाम करने लगा, प्रसाद खाने लगा, भगवान की आरती करने लगा, कथा सुनने लगा, भागवत पढ़ने लगा, तो वह शुद्ध होकर के ही रहेगा। भगवान का ऐसा प्रभाव है, सहज प्रभाव। तो दीति बहुत प्रसन्न हुई, दोष घृणा द्वेष डाह ये सब कुछ भी नहीं था, पूर्ण प्रसन्न हो गई। और अथेन्द्रम आह ताता हम, फिर पूछी इंद्र से बात की और संबोधन क्या करती है, तात तात का अर्थ है प्रिय पुत्र, इंद्र को कह रही है पुत्र, अहम आदित्यानाम भयावहम अपत्यम इच्छन्ति अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम। बेटा मैं तो आदित्यों को भय देने के लिए, आदित्यों के वध के लिए, मतलब तुम जिसमें प्रधान हो तुम्हारे वध के लिए, मतलब अदिति के पुत्रों को मारने के लिए मैं बच्चा चाहती थी और इसी इच्छा से मैंने ये आचरण किया, ये पुंसवन व्रत किया, जबकि यह व्रत सुदुष्कर है, बहुत कठिन है इसको करना, लेकिन इस सुदुष्कर व्रत को मैंने किया अदिति के पुत्रों को, तत्प्रधान अदिति के पुत्रों को मारने के लिए। अपत्यम एक वचन में बोल रहे, मैं एक पुत्र चाहती थी जो अदिति के पुत्रों को मारे, विशेषकर तुमको। एक संकल्पित पुत्र, लेकिन मैं एक प्रश्न करती हूँ, मैंने तो एक पुत्र का संकल्प किया था, पुत्र संकल्पित, एक संकल्पित पुत्र, मैंने एक पुत्र प्राप्ति का संकल्प किया और इसी के लिए मैंने व्रत किया, तो सप्त सप्ता भवन कथम, ये सात सात 49 कैसे हो गए हमारे बेटे। मैं तो एक पुत्र का संकल्प की थी तो ये 49 कैसे हो गए, सप्त सप्ता भवन कथम। यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय मामृषा, फिर संबोधन कर रहे, एक बार तात संबोधन की, तात बहुत प्रिय व्यक्ति को संबोधन किया जाता है, दीति पहले इंद्र भगवान को तात कही, हे प्रिय, यह प्रिय पुत्र, और फिर कह रहे पुत्र, यदि ते विदितम पुत्र, हे पुत्र यदि तुमको विदित हो इसका कारण कि 49 कैसे हो गए, मैंने तो एक पुत्र प्राप्ति का संकल्प किया था तो 49 कैसे हो गए, यदि ते विदितम, यदि त्वया विदितम तुम्हारे द्वारा ये बात विदित हो, तुमको मालूम हो, तो सत्यम कथया, तुम बिल्कुल सत्य सत्य बताओ ये 49 कैसे हो गए। मां मृषा झूठ मत बोलना, अभी देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की भाषा में दीति बोल रही है कि मां मृषा सत्यम कथय मां मृषा, सत्य बोलो झूठ मत बोलना। देवताओं के लोक में झूठा नहीं बोला जाता है, ये झूठ केवल मनुष्य समाज में चलता है, बल्कि उपनिषद में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी झूठ बोलने के लिए ही मनुष्यों की सृष्टि की है, यह बिना झूठ बोले काम चल ही नहीं सकता है, कोई भी डिपार्ट हो कुछ भी हो बिना झूठ के काम चलेगा ही नहीं, इसीलिए देवा सत्यम अनृता मनुष्य अनृता मनुष्य ऐसे कहा, दैवम सत्यम अनृता मनुष्य, सत्य बोलने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया है और झूठ बोलने के लिए मनुष्यों को। फिर भी यहां पर सावधान करें कि बेटा सत्य बोलो कि ये 149 कैसे हो गए, और इंद्र भगवान को तो पूरा मालूम है, वही काट काट कर 49 किए हैं, और माँ दीति पूछ रही है कि सत्यम कथ है सत्य बोलो, मैंने तो एक पुत्र का संकल्प किया था तो 49 कैसे हो गए। तो भगवान इंद्र ने देखा कि जब माँ इतना निष्कपट भाव से खोल करके बोल रही है कि तुमको मारने के लिए मैं पुत्र चाहती थी, इतना खोल करके बोल दिया, तो वे भी कपट छोड़ करके पूरी बात बोल रहे है, साफ साफ बोल रहे है। इंद्र उवाच अम्बते हम व्यवसितम उपधार जागतंतिकम, हे अम्ब, हे अम्बा अम्मा, हे माँ, देखिए संबोधन एकदम निष्कपट भाव से शुद्ध हृदय से बोल रहे, हे माँ जब से मैंने तुम्हारा व्यवसितम निश्चय सुना कि मुझे मारने वाला पुत्र चाहती हो तो मेरा तो होश उड़ गया था, मेरा खाना और नींद भी सब चला गया था, मैं बिल्कुल सुख में नहीं था, जब से सुना तुम्हारा निश्चय, तो इस निश्चय को सुन करके ही मैं अंतिकम आगत तुम्हारे पास आया। और मैं जो वो जो सेवा कर रहा था सेवक, वो कोई सेवक नहीं था, मैं ही था, तुम्हारी सेवा कर रहा था। और तुम्हारी सेवा में कर रहा था कि तुम्हारे व्रत में कब कोई कमी आ रही है, कमी आने पर मैं तुम्हारे बच्चे का घात करूंगा, वध करूंगा, मैं ये सोच करके आया था। अच्छा, तो दीति कहती है अच्छा तुम सेवा कर रहे थे, अब कोई क्रोध नहीं है, स्नेह है इंद्र के प्रति। स्वाभाविक अब सोच रही है कि बेचारे के मारने के लिए अगर मैं पुत्र चाहती थी तो ये जीने का उपाय करे तो स्वाभाविक ही था, कोई दोष दृष्टि नहीं कि तुम इतना हिंसक बन करके आए या कपट करके आए, अरे कपटी, ऐसा बोली नहीं, बहुत प्रेम से बोलती। तो इंद्र कहे कि मैं तुम्हारे निश्चय को सुन करके यहाँ आया, तुम्हारी सेवा करने लगा, मैं व्रत में छिद्र देख रहा था, कमी ढूंढ रहा था, मुझे नहीं कमी मिली, बहुत चिंता व्यापी, लेकिन माँ तुम एक दिन संध्या के समय सो गई, मुंह नहीं धोई, हाथ पैर नहीं धोई, उच्छिष्ट मुख जूठे मुंह सो गई, तो लब्धांतरह मुझे अवसर मिल गया, और अवसर मिल गया, मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया, तुम सो गई थी, तुम्हारे उदर में मैं प्रवेश किया मुख से, तुम सो गए थे, तुमको पता नहीं चला, और मैं गर्भ में जाते ही, उदर में जाते ही अच्छिदम गर्भ में गर्भ पर प्रहार किया, काट दिया, सीधा सात टुकड़ा में काट दिया, एकदम सत्य बोल रहे हैं और निष्कपट भाव से मैं गर्भ को काट दिया। तो मान लीजिए अगर दीति तो नहीं पूछती है, लेकिन ये पूछा जाए कि अरे देवता हो करके तुम इतना जघन्य इतना निर्दय काम किए, बच्चे को काटे, बच्चे पर प्रहार किए, तो कहते हैं अर्थ बुद्धि में धर्म दृक। माँ, जो व्यक्ति अतिशय स्वार्थी होता है, अपने प्रयोजन में ही जिसकी बुद्धि लगी रहती है, वो फिर धर्म पर दृष्टि नहीं रखता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब मैं तो ये देख रहा था कि मुझे जीना है, मुझे तो इस बच्चे को मारना था, अतः धर्म मेरा क्या है, दया आदि ये सब मैं विचार ही नहीं कर रहा था, बस जीने पर मेरी दृष्टि थी कि मेरे जीवन में जो रोड़ा है, जो दुश्मन है, उसको मारना है बस। अब धर्म की बात मत पूछो, अर्थ बुद्धि न धर्म दृक या धर्मविद। जो व्यक्ति केवल अपने मतलब पर दृष्टि रखा है, स्वार्थ में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, ये करना वो करना यही करना, तो वो धर्म नहीं देखता है। तो अब मैं धर्म कहां देख रहा था कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो इस तरह स्वार्थ में था कि मैं अपने शत्रु का वध करूंगा ही। तो हुआ क्या माँ, जब मैं गर्भ में गया, उदर में गया, तो कृतो में सप्तधा गर्भम, मैंने गर्भ को सात टुकड़ा में काट दिया। लेकिन अद्भुत आश्चर्य हुआ कि आसन सप्त कुमार का, ये सात खंड जब हुए शरीर के, तो वे सात कुमार हो गए। तेपी चैकई कसो वृकणा, फिर मैं उन सातों में से एक एक के सात सात टुकड़ा किया, तो सप्त धारणा पे ममर रहे, और ये साथ साथ 49 हो गए, 49 हो गए, कट गए कई टुकड़े में, एक के साथ टुकड़े हुए, फिर एक एक के साथ टुकड़े, फिर भी नौ ममर रहे, ये मरे नहीं, फिर भी ये मरे नहीं, ये मैं ही काटा। इतना क्लियर कहना कि मैं इस बच्चे को काटा तो सात हो गया कुमार, और सात को फिर मारा तो 49 हो गए और मरे नहीं। लेकिन भगवान इंद्र देखिए यहाँ अनुमोदन कर रहे हैं कि माँ तुमने भगवान की भक्ति किया है, पूजा किया है, इसी के प्रभाव से बच्चे मरे नहीं। ततस्तत्परमाश्चर्य वीक्षाध्यवसितम मया महापुरुष पूजाया सिद्धि काप्यनुसंगिणी। हे माँ, मैं इस परम आश्चर्य को जब देखा, किसी पर वज्र का प्रहार किया जा रहा है तो मरने की अपेक्षा सात खंड में शरीर हो गया और फिर सात कुमार हो जाए, ये आज तक हमने जीवन में कभी सुना भी नहीं था, देखने की बात तो अलग रही, पर अपने आंख से जब इस आश्चर्य को मैं वीक्षा विशेष रूप से देखा परम आश्चर्य को, बच्चे को काटा जा रहा है तो सात कुमार हो गया, सातों को काटा जा रहा है तो 49 हो गए, तो मया अध्यवसित, मैं विचार करने लगा क्या कारण है इस रहस्य के पीछे, क्या कारण है बच्चे मरे क्यों नहीं, उल्टे शरीर काटने पर सात टुकड़ा में शरीर होकर के पुनः कुमार अवस्था में हो गया, फिर जी गया शरीर और 49 हो गए। मैं बार बार विचार करने लगा ये क्यों हो गया, क्या हो गया, क्या रहस्य है। तब हमने ये निश्चय किया माँ, मैंने ये समझा कि महापुरुष पूजाया सिद्धि काप्य अनुसंगिणी, ये महापुरुष भगवान विष्णु की पूजा का आनुषंगिक फल है, ये भगवान की भक्ति का फल है कि बच्चे मरे नहीं। अनुसंगिणी सिद्धि, अनुसंगिणी का अर्थ होता है कि मुख्य फल तो भगवान की भक्ति है ही, यही मुख्य फल है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान जीवन की अवधि बढ़ा देते हैं, धन बढ़ा देते हैं, जस देते हैं, विद्या देते हैं, क्या क्या बड़ा से बड़ा काम हो जाता है, इसको अनुसंगिक सिद्धि कहते हैं, अनुसंगिक फल। अनुसंगिक अर्थ, जैसे कोई व्यक्ति चावल उत्पन्न कर रहा है, धान उत्पन्न कर रहा है, तो चावल की जो भूसी होती है वो अपने आप हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। धान की खेती करते हैं तो भूसी अपने आप हो जाती है, ऐसा नहीं कि भूसी के लिए खेती करे, तो भूसी आनुषंगिक फल है, यह पुआल मिल जाना आनुषंगिक फल है। तो इसी तरह भगवान की भक्ति करने पर मुख्य फल तो है भगवान में प्रेम होना और भगवान की पूजा करना, यही फल है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप आनुषंगिक फल होता है, जीवन की अवधि बढ़ जाती है, जस बढ़ता है मनुष्य का, बल बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, और कोई कार्य अगर वो करना चाहता है तो उसमें वो सफल होता है, ये सब आनुषंगिक फल कहा जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला कई तरह से सफल होता है, देखा जाता है संसार में, करके तो कोई देखे, व्यक्ति वोट में जीत जाता है, उसे करके देखा गया है। एक व्यक्ति अभी गिरिराज परिक्रमा का संकल्प किया और वो विधायक बन गया, जीत गया, उसने प्रोग्राम कराया था, 3 दिन भक्तों का बहुत बड़ा कीर्तन हुआ, कथा हुई, ऐसे कई उदाहरण हैं जो तो बड़े बड़े प्रयास के बाद भी काम नहीं होता है, भगवान की भक्ति से हो जाता है। यहीं पर जो अनुसंग की सिद्धि हुई है कि बच्चे गर्भ में मरे नहीं बल्कि काटे जाने पर और अलग अलग बच्चे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, यह अद्भुत परम आश्चर्य है। देवराजेंद्र कहते हैं कि माँ इस परम आश्चर्य को मैं विशेष रूप से देख करके यही विचार किया कि ये सब भगवान के पूजा का प्रभाव है, अनुसंगिक फल। महापुरुष पूजा है, महापुरुष भगवान को कहते हैं, और सब पुरुष हैं लेकिन महापुरुष तो भगवान, तो महापुरुष की पूजा का यह प्रभाव है। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः ये तु नेच्छन् तपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृत। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और कोई चीज चाहते नहीं है, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, तो वही वास्तव में परमार्थ और स्वार्थ को जानने वाले हैं, ठीक ठीक ज्ञानी वही हैं। जो और सांसारिक वस्तुओं की तो बात छोड़ दीजिए, वे मुक्ति तक नहीं चाहते हैं, भगवान से केवल प्रेम चाहते हैं। और जो भगवान की आराधना करके गुणस्पर्श चाहते हैं, शब्दादि विषयों का आस्वादन करना चाहते हैं, वो विद्वान नहीं है। तो आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुध से नरके पिजत। भगवान की आराधना करके क्या क्या मिलता है, भगवान आत्मप्रदम अपने को भी दे देते हैं, भक्त के ऋणी होकर के भगवान उसके हाथ में बिक जाते हैं, इसको आत्म प्रदम कहते हैं। आत्मद, इस संसार में कोई व्यक्ति अपने किसी भी भक्त को देगा सब कुछ, लेकिन अपने को नहीं दे सकता है, अपने को अधीन नहीं बना सकता है। लेकिन श्री भगवान तो अपने को भी दे देते हैं। जैसे अर्जुन के हाथ में भगवान ने सारथी के रूप में अपने आप को दे चुके हैं। अर्जुन आज्ञा देते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और भगवान सेवा करते हैं। इसको कहते हैं आत्मदह, आत्म पर्यंत बदान्यता, अपने आप को दे देते हैं। जसोदा के गोद में अपने आप को दे दिए हैं, खिलाओ पिलाओ लड़ लड़ाओ जो भी करो। तो भगवान तो आप अपने आप को दे देते हैं और अनंत क्रीड़ा परायण है। स्वात्मानम सुआत्मानम परम सुंदर श्री विग्रह है उनका। चक्रवर्ती पाजी अर्थ यहां करते हैं बहुत सुंदर हैं भगवान, सुआत्मानम या स्वात्मानम, सबके सुहृद है, कुशल है, प्रिय है और जगत के ईश्वर हैं। तो ऐसे प्रभु को प्रसन्न करके कौन विद्वान व्यक्ति संसारिक सुख चाहेगा, गुण स्पर्श चाहेगा? ये गुण स्पर्श संसार के सुख तो निरये पीस जब, ये तो नरक में भी मिलते हैं। नरक का अर्थ है कि सूकर और कुकर आदि योनियों में भी ये सब विषय मिल जाते हैं। स्पर्श, किसी को छूने का, किसी की बात सुनने का, खाने का, पीने का, ये सब सुख तो सुअर और कुकुर आदि की योनियों में भी मिल जाते हैं। अतः कोई विद्वान व्यक्ति भगवान की आराधना करके ये नहीं चाहेगा। तो माता दीति पर एक व्यंग कर रहे हैं कि माँ तुमने भी जो पहले सोचा कि भगवान की आराधना करूं तो उसे तुमको पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा वध करेगा, तो इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। पर जो कुछ भी हो तुमने भगवान की भक्ति किया इसलिए तुम्हारे पुत्र मरे नहीं और हमारे प्रति भी इनका कोई द्रोह नहीं है और तुम भी आज इतना प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो मैं तुम्हारे चरणों में मैं भीख मांगता हूँ। तदिदम मम दौर्जन्यम बालिशस्य महियसी छंतु मरसी मातस्तम दृष्टिया गर्भ मृत। माँ स्नेहमयी जननी, मेरी दुर्जनता को क्षमा करो, मैंने जो दुर्व्यवहार किया, बच्चे को गर्भ में मारा, मैं मूर्ख हूं, मैं तो बच्चा हूं, बालिश हूं और तुम जननी हो, माँ हो, तुम्हारे लिए क्षमा ही उचित होता है, तो तुम मुझे क्षमा करो। मातः अंत में संबोधन, हे माँ तुम मुझे क्षमा करो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यदि बच्चा मर गया होता गर्भ में तब मैं क्षमा करने योग्य नहीं होता, लेकिन मरा नहीं, भाग्य से बच्चा वज्र के द्वारा काटे जाने के बाद भी मृतोत्थित, एक प्रकार से मरा था लेकिन उत्थित जी गया, तो इसलिए मैं क्षमा करने योग्य हूँ, मुझे क्षमा करो। अगर बच्चा मर गया होता तब तो क्षमा नहीं करने योग्य था, तो मैंने तो मारा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तो मार ही दिया था, लेकिन फिर भी तुम माँ हो, मुझे क्षमा करो, मुझे आशीर्वाद दो। इस प्रकार जब दीति ने साफ साफ बात कहा निष्कपट, तो इंद्र ने भी निष्कपट भाव से बात किया। तो दीति ने कहा कि बेटा तुम इन भाइयों को ले जाओ, अपने साथ रखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस कंडम समाज में लोग रहें, असुरों के समाज में रहें, तुम ले जाओ, मैंने इनको भगवान की भक्ति से पैदा किया है तो तुम अपने साथ रखो, ले जाओ। तो इंद्रस्तया भ्यनु ज्ञात शुद्ध भावे न तुष्टया, तो इंद्र के शुद्ध भाव से तुष्ट हो गई थी, अथवा शुद्ध भाव होने से, हृदय होने से तुष्ट हो गई थी, तो इंद्र के निष्कपट वचन से संतुष्ट थी। तो ऐसी संतुष्टा दीति से आज्ञा लेकर के और मरुद गणों के साथ उसको नमस्कार करके प्रभु इंद्र अपने धाम चले गए। मरुद भी सहताम नत्वा जगामत्री दिवम प्रभु, इंद्र देवता अपने धाम चले गए और 49 भाइयों को लेकर विमान से गए। तो एवं ते सर्वमाख्यातम जन्मम तम परिपृच्छसि, हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं एवं ते सर्वमाख्या, तो मैंने सब कुछ व्याख्या कर दिया जो तुम मुझसे पूछे हो। मंगलम मरुताम जन्म किम भूय कथयामी ते, मरुदगणों के मंगलमय जन्म का मैं वर्णन किया है, बहुत मंगलमयी कथा है। आगे और क्या सुनना चाहते हो, मैं तुमसे आगे क्या कहूँ। कहने का इतना उत्साह है, महाराज परीक्षित के प्रश्न से बहुत प्रसन्न है सुखदेव गोस्वामी। तो कहते भूय किम कथयामी ते, फिर मैं क्या कहूँ, आगे फिर पूछो आगे क्या कहूँ। इस तरह से वक्ता को उत्साह होता है। तो मैं यहाँ पर ये मरुदगणों की कथा को कहा, लेकिन कल इसकी समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। इस कथा में जो सिद्धांत आ रहा है और भगवान की महिमा, भगवान के भजन की महिमा, इस पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की जाएगी। और इसके बाद पुंसवन व्रत का वर्णन किया जाएगा। वास्तविक पुंसवन व्रत है क्या, तो उसमें भगवान की पूजा की बात नहीं कही गई थी, थोड़ी सी कही गई थी, लेकिन किस प्रकार सवेरे से शाम तक भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसका वर्णन 19वें अध्याय में है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।